तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात अमृत के समान है। संसार में दो प्रकार के अमृत उपलब्ध हैं। एक अमृत जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, भगवान श्री विष्णु ने समस्त देवता और असुरों को समुद्र का मंथन कराया। समुद्र में अनेक औषधि डालकर समुद्र से अमृत उत्पन्न हुआ और वह अमृत भगवान विष्णु ने देवताओं को पिलाया। परंतु समुद्र से निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाने से देवता अमर नहीं हो पाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने इस कलयुग में वेद व्यास जी का अवतार धारण किया। जैसे वहां पर भगवान विष्णु ने समुद्र का मंथन किया, वैसे यहां पर वेद व्यास जी ने समस्त वेद पुराण और उपनिषद का मंथन किया। जैसे वहां पर समुद्र का मंथन करके अमृत प्रकट किया, वैसे यहां पर वेद व्यास जी ने समस्त वेद शास्त्रों का मंथन करके श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को प्रकट किया। उस समुद्र मंथन के अमृत को पान करके देवता अमर नहीं हुए, परंतु यदि कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत का एक बार भी पान कर लेता है, वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, सदा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े देवता भी इस भागवत कथा अमृत को सुनने की अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह भागवत सुनाने के लिए उपस्थित हुए, उस समय स्वर्ग से अनेक देवता इस पृथ्वी पर आए और अपने साथ अमृत का कलश लेकर, अमृत का घड़ा लेकर आए। समस्त देवता सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे, प्रभु ये अमृत हम स्वर्ग से लाए हैं, आप ये अमृत अपने पास रख लीजिए, चाहे परीक्षित को पिला दीजिए, और इस स्वर्ग के अमृत के बदले आप हमें कथा अमृत पिलाइए, कथा अमृत का पान कराइए। जब सुखदेव गोस्वामी ने यह सुना कि यह देवता लोग भागवत कथा अमृत की तुलना यह तुच्छ स्वर्ग के अमृत के साथ कर रहे हैं, वास्तव में भागवत कथा अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत कुछ है ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने उस समय कहा, क्व काच, कहां तुम्हारा टूटे हुए कांच के टुकड़े जैसा यह स्वर्ग का अमृत, और क्व मणि महान, कहां दिव्य मणि के समान यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत। तुच्छ शीशे के टुकड़े की उपमा आप कथा भागवत कथा अमृत के साथ कर रहे हो, आप बहुत बड़े अपराधी हो, आपने आज भागवत का अपराध किया है, इसलिए आप लोग भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, अभी इसी वक्त तुरंत यहां से चले जाओ। यदि बिना अमृत लिए आए होते नम्रता से तो मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता, भागवत कथा अमृत पिलाता, परंतु तुमने स्वर्ग के तुच्छ अमृत की तुलना कथा भागवत कथा अमृत के साथ कर दी। तुम भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, भगा दिया। ये है कथा अमृत जो स्वर्ग के अमृत से भी दिव्य है, महान है। ये भागवत कथा अमृत श्रवण करने के योग्य नहीं हो, भगा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और जिस महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था कि ये परीक्षित 7 दिन में मर जाएगा, तक्षक नाग आकर इसे डस लेगा। परंतु सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनकर तक्षक नाग महाराज परीक्षित को मारने के लिए आए, उनके पहले ही महाराज परीक्षित भगवान के धाम में चले गए। इस भागवत कथा को सुनकर महाराज परीक्षित परम पद को प्राप्त हो गए और परीक्षित के भगवान के धाम में जाने की यह खबर तीनों भुवन में फैल गई। सब लोग को पता चल गया महाराज परीक्षित भगवत धाम प्राप्त हुए हैं। यह बात ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को पता चली और ब्रह्मा जी ने विचार किया, 7 दिन मात्र भागवत कथा सुनने से कोई भगवान के धाम में जा सकता है? संसार के लोग हजारों हजारों जन्म तक योग करते हैं, रात दिन ध्यान करते रहते हैं, तपस्या होम हवन करते हैं, इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस भगवान का दर्शन नहीं होता है, उस भगवान के धाम की प्राप्ति मात्र 7 दिन कथा सुनने से मिल जाए। पुरा धाता अपि विस्मित, साक्षात ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, मोहित हो गए। मात्र 7 दिन कथा सुनने से भगवान नहीं मिल सकते। तब ब्रह्मा जी ने परीक्षा की, परीक्षण किया, बोले आज मैं अपने हाथों से देखूंगा भागवत कथा सुनने का फल कितना है और अन्य साधनों का फल कितना है। सत्य लोके तुला बंधवा, स्कंद पुराण में लिखा है, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक में एक तुला बांधी, वजन का कांटा, और उस तुला में दो पल्ले थे। एक पल्लू में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने के फल को रखा। भागवत सप्ताह सुनने से जो फल मिलता है एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में ब्रह्मा जी ने इस संसार में रहकर तपस्या करने का फल रखा। और जैसे ही वह कांटा उठाया, उस तपस्या से ज्यादा वजन भागवत कथा सुनने का फल का हुआ। तब तपस्या को निकालकर ब्रह्मा जी ने हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान करने का फल रखा, लेकिन फिर भी भागवत सप्ताह सुनने का फल ज्यादा रहा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ध्यान के फल को निकालकर यज्ञ के फल को रखा, अनेक अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और जैसे ही कांटा उठाया भागवत सप्ताह श्रवण करने का फल ज्यादा रहा। अंत में ब्रह्मा जी थक गए और एक छबड़े में, एक पल्ले में जितने भी साधन थे सभी साधन रख दिए और एक छबड़े में भागवत कथा श्रवण करने का फल, और फिर कांटा उठाया, सारे साधन हवा के समान हल्के हो गए और भागवत सप्ताह श्रवण करने का फल सभी साधनों की तुलना में भारी हो गया। एक और आप रात दिन तपस्या करो, ध्यान करो, यज्ञ होम हवन करो, और एक और मात्र भगवान की कथा सुनो, कथा सुनने का फल बढ़ जाता है। कथा सुनने का फल अधिक हो जाता है। भागवत कथा श्रवण सभी साधनों में उत्तम साधन है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेकों साधन हमारे वेद और शास्त्र में वर्णन हुए हैं और सब लोग अपनी अपनी बुद्धि और मन के अनुसार साधन करते हैं, परंतु सबसे सरल साधन यदि कोई है तो है भगवत कथा श्रवण करना। सबसे सरल, अमृत के समान। वेद व्यास जी ने कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद भागवत कथा को खाना नहीं है, पीना है, है ना? खाने और पीने में अंतर है। जब हमको खाने के लिए कुछ दिया जाता है तो उसे चबाना पड़ता है, परंतु बना बनाया जूस ही दिया जाए तब तो कोई कष्ट नहीं, मात्र पी लेना। श्रीमद् भागवत खाने के समान नहीं, श्रीमद् भागवत पीने के समान है, पीना है। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात बताते थे। एक बार एक ब्राह्मण घर पर गए, पत्नी ने बहुत सारा व्यंजन भोजन बनाकर रखा। ब्राह्मण बैठे भोजन करने के लिए, एक हाथ से पत्नी भोजन परोस रही है, दूसरे हाथ से पत्नी पंखा जल रही है, और ब्राह्मण मात्र बैठे बैठे खा रहे हैं, परंतु खाते खाते उस ब्राह्मण को पसीना निकल रहा था। तब पत्नी ने कहा कि पतिदेव प्रभु आपको एक बात बताऊं, बोलो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने बनाया और अभी भोजन मैं आपको परोस रही हूं, दूसरे हाथ से पंखा मैं जल रही हूं, और पतिदेव पसीना आपको क्यों आ रहा है? सारी मेहनत मैंने की और पसीना आपको आ रहा है? तब ब्राह्मण ने इतना ही कहा कि सारी मेहनत तूने की, ये चबा कौन रहा है, तेरा बाप? जानती नहीं हो चबाने में कितनी मेहनत पड़ रही है? ब्राह्मण को चबाने में कष्ट हो रहा था। होता है, ये संसार के जितने भी साधन हैं चबाने के समान है। तपस्या करने खड़े रह जाओ कितना कष्ट है, शरीर को तपाना 2 दिन 5 दिन। आज तो महीने में 2 बार एकादशी रहने में नानी मर जाती है, साल में 1 बार निर्जला पांडव एकादशी नहीं कर सकते हैं। तपस्या में कष्ट है, यज्ञ करने में कष्ट है। यज्ञ करना होता है, उसमें कई सारी सामग्री, शुद्ध घी जो आज बिल्कुल मिलना मुश्किल है, और उसमें भी उस यज्ञ के अग्नि में धूल धुएं में कष्ट है। ध्यान करने बैठो कष्ट है। संसार के सभी साधनों में कष्ट है, परंतु यह भागवत कथा श्रवण जो है इसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। इसे मात्र सुनना है, पीना है, पीते रहिए। बताओ आप यहां पर बैठे हो, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, कोई कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं, और कथा के बाद सबके लिए प्रसाद है। सर्वोत्तम साधन आज हमें श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। आइए श्री प्रभुपाद जी की इस कृपा का हम लाभ उठाएं। हम यहां पर श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध की कथा सुन रहे हैं। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया, मैत्रेय ऋषि विदुर जी को दक्ष प्रजापति के 16 कन्या के वंश का वर्णन कर रहे थे। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या और उनमें से सबसे जो छोटी थी उनका नाम था सती। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, वैसे तो दक्ष प्रजापति की सभी कन्याओं को अनेक पुत्र हुए, अंत अनेक संतानों की प्राप्ति हुई, परंतु यह अंतिम कन्या जो सती थी उनका विवाह शिवजी के साथ हुआ, और यह सती गर्भवती हो, उनको बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो, उनके पहले ही सती ने यज्ञ में आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने का कारण दामाद और ससुर के बीच में झगड़ा। तब विदुर जी जिज्ञासा करते हैं कि हे प्रभु, भवे सिलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सल विद्वेशम करोत कस्मात अनादृत्या आत्मजाम सतीम। शिवजी तो शीलों में श्रेष्ठ है, बहुत नम्र है, और ऊपर से दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसे ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? शिवजी में अनेक गुण है, कस्तम चरा चरम गुरुम, यहां तक इस संसार के गुरु है, निर्वेरम शांत विग्रहम, और संसार में किसी के साथ वैर नहीं करते हैं, परम शांत, और आत्मरामम कथम द्वेष्टि, और स्वयं आत्मा में ही रमण करने वाले। फिर दक्ष प्रजापति के साथ शिवजी का झगड़ा क्यों हुआ? एतदाख्या हि मे ब्रह्मन् जामातु ससुरस्य च। हे ब्रह्मन्, हे प्रभु, एतद आख्या ही, आख्यान करके, व्याख्या करके, कृपया करके आप मुझे बताइए कि शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ था जिस झगड़े के कारण सती को उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्महत्या करनी पड़ी। विद्वेशस्तु यत प्राणान त्यजन्ते दुस्त्यजान सती। जिस प्राणों को त्यागना बहुत मुश्किल है, जिस शरीर को छोड़ना बहुत दुरूह है, संसार के लोग सब कुछ चाहते हैं परंतु शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है, ऐसे शरीर को सती ने क्यों त्याग दिया, इसका कारण बताइए। विदुर जी ने बहुत सुंदर जिज्ञासा की और इस जिज्ञासा से मैत्रेय मुनि प्रसन्न हुए। वास्तव में भक्तों, विदुर जी का यह गुण हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। हम सबको जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए। आज विदुर जी मैत्रेय मुनि को जिज्ञासा कर रहे हैं। महाभारत में वेदव्यास जी ने यहां तक लिख दिया, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिज्ञासा नहीं करता है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु के समान है। मनुष्य का जीवन इसी के लिए मिला है कि हम लोग जिज्ञासा करें, भगवान के बारे में कुछ जाने। ये सभी वेद शास्त्रों का सार वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र में रख दिया, और वेदांत सूत्र के प्रथम मंत्र में वेदव्यास जी ने लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः, इसलिए, किस लिए? क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनि काटने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सबको ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। और यदि हम भगवान के बारे में नहीं जानते हैं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, इस संसार में जिन जिन लोगों ने जिज्ञासा की है और जिन जिन लोगों ने भगवान के विषय में जिज्ञासा की है उनको भगवान अवश्य मिले हैं। रामायण में चलिए, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क जी को जिज्ञासा की, भगवान राम की प्राप्ति हुई। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति जिज्ञासा की, भगवत गीता प्राप्त हुई। परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के प्रति जिज्ञासा की, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। 88,000 ऋषि मुनि ने सुत गोस्वामी को जिज्ञासा की, भगवत कथा प्राप्त हुई। और यहां पर विदुर जी जिज्ञासा कर रहे हैं, भक्तों जिज्ञासा होनी चाहिए, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा, लालसा। विदुर जी जिज्ञासा कर रहे हैं, बताइए मुझे वह कथा सुनाइए। तब मैत्री मुनि कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नय। मैत्रेय वाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, यह मैत्रेय नाम इसलिए हुआ क्योंकि ये मित्रा देवी के पुत्र थे, मित्रा के पुत्र होने के कारण मैत्रेय नाम हुआ। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा सुनाते हैं। पुरा विश्व सुजाम सत्रे, पुरा, पुरा का अर्थ होता है बहुत पहले की ये बात है, वंस अपॉन अ टाइम। कथा सुनाने से पहले कहते हैं ना, बहुत पहले ये घटना घटी थी, तब मानो तुरंत हमारे मन में प्रश्न हो, बहुत पहले माने कितने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले। तब एक आचार्य कहते हैं, पूरा का अर्थ है प्रथम कल्पे स्वयंभू मनवंतरे, प्रथम कल्प में, अभी जो मनवंतर चल रहा है ये सप्तम सातवां मनवंतर है, प्रथम मनवंतर में स्वयंभू मनवंतर। भक्तों मनवंतर जो है एक काल की अवधि है, जैसे 1 सेकंड आप सब लोग जानते हैं, ऐसी 60 सेकंड होती हैं तब 1 मिनट बनता है, ऐसी 60 मिनट होती हैं तब 1 घंटा समाप्त होता है, ऐसे 24 घंटा बीतते हैं तब 1 दिन समाप्त होता है, ऐसे 31 दिन बीतते हैं तब 1 महीना समाप्त होता है, और ऐसे 12 महीने बीतते हैं तब 1 साल समाप्त होता है, और ऐसे 432,000 वर्ष जब बीतते हैं तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है, ऐसे 864,000 वर्ष बीतते हैं तब द्वापर युग समाप्त होता है, ऐसे 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तब त्रेता युग समाप्त होता है, और उससे 4 गुना जब वर्ष बीतता है तब सतयुग समाप्त होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जब 4 चतुर्युग जब मिलते हैं तब 1 चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे चतुर्युग जब 71 बार घूम जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे 71 बार जब हो जाते हैं तब 1 मनवंतर की अवधि समाप्त होती है, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं तब 1 कल्प समाप्त होता है, तब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते हैं, तब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। हिसाब जोड़कर यदि आपको कहा जाए तो ब्रह्मा जी का 1 दिन हमारे पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है जानते हैं? हमारे इस पृथ्वी में 8,64,00,000,000 वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त होता है, 8,64,00,000,000 वर्ष। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी का जब 100 साल समाप्त होता है तब भगवान एक बार सांस लेते हैं। भगवान का सांस कितना लंबा है? भगवान का एक सांस एक ब्रह्मा जी के जीवन के समान, एक कल्प। भगवान जब एक बार सांस लेते हैं तो यहां पर 14 मन्वंतर बीत जाते हैं और मन्वंतर में करोड़ों करोड़ों वर्ष और हमारे जैसे अरबों बार जीव आकर चले जाते हैं। एक बार भगवान सांस लेते हैं तो ब्रह्मा समेत सब लोग भगवान के अंदर चले जाते हैं और फिर भगवान सांस छोड़ते हैं तो सब लोग बाहर निकलते हैं। विचार कीजिए भक्तों, भगवान के सामने हम क्या है, एक नगण्य। कम करो इसको, भगवान के सामने और कम करो और हरे कृष्ण। ठीक है, भगवान के सामने एक नगण्य जीव है, छोटे से कीड़े, परंतु हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं अभी तो जीवन बहुत पड़ा है, बहुत बाकी है, बाद में भक्ति करेंगे, बाद में भजन करेंगे। क्या खाक भजन करेंगे? हम हमारे जीवन को बहुत लंबा समझते हैं, बहुत लंबा जीवन है और समय को ऐसे ही व्यर्थ करते जा रहे हैं। समय को समझिए, समय की महिमा को समझिए भक्तों। इस संसार में जिस व्यक्ति को समय, जिस व्यक्ति ने समय को नहीं जाना उसने मनुष्य जीवन को गवा दिया। काल चक्र स्वयं भ्रमिम, ये काल रूपी जो चक्र है वो स्वयं अपने आप घूम रहा है। पूरी दुनिया मिलकर भी इस चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। काल को कोई, काल की गति को कोई रोक नहीं पाएगा, काल बीत जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। अरे तू क्या समय पास करेगा, समय तुझे पास कर रहा है। ताश खेलते हैं, फिल्म देखते हैं, न जाने क्या क्या टाइम पास कर रहे हैं। एक एक सेकेंड कीमती है, एक एक मिनट कीमती है और बहुत कम समय है जीवन में। आप इतने ऐसे मत समझिए कि जीवन बहुत लंबा है। कमल दल जल जीवन टलमल, अरे कब हवा का झोंका आए और कमल के पत्ते से पानी की बूंद गिर जाए, उसी प्रकार हमारा यह जीवन है। कब काल आए और हमें मार डाले कोई भरोसा नहीं है। एक बार इंद्र को बहुत बड़ा गर्व हो गया कि मेरा जीवन बहुत लंबा है, क्यों नहीं हो सकता है। यहां पर हमारे 1000 दिन जब बीतते हैं तब स्वर्ग में इंद्र का 1 दिन समाप्त होता है। 1000 दिन के समान स्वर्ग में इंद्र का 1 दिन है, तो अभिमान तो होगा ही, मैं लंबा जी रहा हूं। देवराज इंद्र घूमते 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 एक जगह पर गए, वहां पर लोमस नाम के ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे।
उस ऋषि का नाम लोमस इसलिए पड़ा क्योंकि उस ऋषि के शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल थे, बहुत सारे रोम थे। ये रोम जानते हैं ना, शरीर के ऊपर जो बाल है उसे रोम कहते हैं। बहुत सारे रोम थे, बाल थे, इसलिए उनका नाम ही हो गया लोमस। और उन्होंने अपने लिए न तो एक घर बनाया, न बंगला बनाया, एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। घास का जो ढेर होता है, आप क्या कहते हैं, घास को बांध कर यहां पर बहुत लोग रखते हैं, घास की बोरी समझिए हमारी भाषा में, एक घास की बोरी रखते थे और उनमें जो छांव आती थी उस छांव में बैठकर भगवान का नाम लिया करते थे। सूर्य ये बाजू आ जाते तो इस बार इस ये बाजू छांव में आकर बैठ जाते थे। इंद्र घूमते घूमते आए, हे ऋषि मुनि आप भजन साधन कर रहे हो, अपने लिए एक झोपड़ी तो बना लो, एक घर तो बना लो। तब लोमस ऋषि ने कहा जीना है बहुत कम दिनों के लिए और उसमें क्या झंझटमारी करना, घर बनाना और उसमें बेडरूम, और जीना है बहुत कम दिन, अब क्या ये सब बनाना। तब इंद्र को जिज्ञासा हुई कि भाई तो फिर आपके जीवन में कितने दिन बचे हैं, कितने दिन तक आप जीने वाले हो, आपका जीवन कितना है। तब लोमस ने कहा, देवराज इंद्र आप मेरे शरीर पर बाल देख रहे हो? बोले हां। ये मेरे शरीर से एक बाल जब गिरता है तब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, एक कल्प बीतता है तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है, और ब्रह्मा जी का दूसरा जीवन जब बीतता है तब दूसरा बाल गिरता है। जब मेरे शरीर के सभी बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसे लोमस ऋषि कह रहे हैं कि जीना है बहुत कम दिन के लिए, क्या ये सब मगजमारी और झंझटमारी करना, भजन कर। और हम लोग, उनका जीवन तो इतना लंबा था, हम लोग जीना है बहुत कम दिन, और उसमें भी कितना प्लान लगाते हैं, यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ ड्राइंग रूम बनाएंगे, बेडरूम बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से दरवाजा करेंगे, यहाँ से दरवाजा करेंगे, तब तक तो काल आ जाता है तो मार डालता है, घर वहां का वहीं रह जाता है, पैसे भी वहीं के वहीं रह जाता है, और व्यक्ति संसार को छोड़ के चला जाता है। जीवन में जितना भी किया श्रम एव ही केवलम, कुछ साथ में नहीं आता है। यहां पर आप लोग कितनी भी मेहनत करो, कितने भी पैसे कमाओ, कितना भी बड़ा घर और बंगला बनाओ, मरने के बाद कुछ साथ में नहीं आता है भक्तों, कुछ साथ में नहीं आता है। मरने के बाद तो एकमात्र भगवान की भक्ति साथ में आती है। आपने कुछ समय कुछ दिन भगवान का भजन किया है वो साथ में आएगा, संसार की संपत्ति नहीं। संसार में कई लोग आए, एक से एक धनी, यहां तो क्या धन है, एक से एक धनी, करोड़पति अरब खरबपति आए, सहस्त्र बाहु दस बदन आदनी तो बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठरीते। सहस्त्र बाहु एक नहीं, हजारों भुजा वाला सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन आया, दस दस मस्तक वाला रावण सोने की नगरी में रहता था, परंतु एक तोला सोना भी मरने के बाद साथ में लेकर नहीं गया। इन्होंने हम करी धन धाम सवारे, ये मेरा है, ये मेरी तिजोरी में रखूंगा, मेरा मेरा करके बहुत सारा धन एकत्रित किया, परंतु अंत चले उठ रीते, साथ में कुछ नहीं लेकर गए। जीवन में मरने के बाद भक्तों कुछ साथ में नहीं आएगा, ये तो बहुत दूर की बात है, कल का इतिहास। हमारे भारत में अलेक्जेंडर सिकंदर नाम का एक व्यक्ति आया था, उनके पिता का नाम पुरु था, और सिकंदर पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर की इच्छा थी मैं दुनिया का राजा बनूं, पिता ने बहुत समझाया, बेटा दुनिया को जीतकर क्या करेगा, लेकिन जवानी का जोश होता है ना, जवानी में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है। दुनिया को जीतना, और दुनिया जीतने के लिए निकला। कहा जाता है सिकंदर ने लगभग 80% दुनिया को जीत लिया, परंतु पता चला कि सिकंदर को कैंसर हो गया है। कैंसर जानते हैं? कैंसर एक रोग है, एक बीमारी है, व्यक्ति एक दो महीने में मोमबत्ती की तरफ पिघल जाता है और मर जाता है। सिकंदर को यह रोग हुआ, पता चला, सिकंदर वापस लौटा, और मरने से पहले सिकंदर ने अपने अनुचरों को कह दिया, बस अब मैं मरने जा रहा हूं, परंतु मेरी एक अंतिम ख्वाहिश यह है कि जब आप लोग मुझे जमीन में गाड़ोगे, जब जमीन में गाड़ दोगे, तब मेरे दोनों हाथ जमीन के बाहर रखना, दोनों हाथ ऊपर रखना। बोले प्रभु, हमारे इतिहास में, हमारे परिवार में आज तक किसी ने ऐसे नहीं कहा, ऐसी इच्छा नहीं की, दोनों हाथ बाहर ऊपर रखने के लिए नहीं कहा, और आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? तब उस सिकंदर ने इतना ही कहा था कि मैं तो जीते जी नहीं समझ पाया, वास्तव में मैं जीते जी समझ नहीं पाया, परंतु कलयुग में आने वाले लोग मुझे देखकर तो समझ जाए कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, दुनिया को जीत चुका है, परंतु दुनिया से जा रहा है तब दोनों हाथ खाली है। दोनों इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, सिकंदर सभी मुल्कों के मालिक था, लगभग पूरी दुनिया का राजा था। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ, साथ में कुछ नहीं। भक्तों, जीवन में मरने के बाद साथ में मात्र भगवान की भक्ति आएगी। इसलिए कमाना है, यदि कुछ अर्जन करना है, प्राप्त करना है, तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ग्रहण करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, नहीं तो ये समय पानी की तरह जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, पूरा बहुत पहले की यह बात है। कितने पहले की? बोले प्रथम कल्पे, जब यह सृष्टि का निर्माण हुआ, और इस सृष्टि के निर्माण के प्रथम कल्प में, और उस प्रथम कल्प के स्वयंभू मन्वंतर में एक दिन की बात, विश्व सृजाम सत्रे, प्रजापतियों का बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। विश्व सृजाम का अर्थ है विश्व को सर्जन करने वाले लोग। इस संसार में बहुत लोग विश्व की प्रजा का सर्जन किए, और प्रजा का सर्जन करने के कारण उसे प्रजापति कहा गया। अनेक मरीचि आदि प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए, और उस समय ये सभी प्रजापतियों का राजा ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बनाया था, दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बनाया था। बहुत बड़ा सत्र था, ये समस्त मरीचि इत्यादि अनेक अनेक ऋषि मुनि, अनेक अनेक प्रजापति उस सत्र में आए। भक्तों, सत्र का अर्थ क्या होता है? सत्र किसे कहते हैं? शास्त्र में लिखा है, कर्तारो बहवो यत्र होजयन्ते बहवस्तथा। जिस कार्य में एक नहीं बहुत सारे यजमान हो, कर्तारो कार्य करने वाले जिसमें बहुत सारे हो, होजयन्ते जिसमें स्वाहा स्वाहा, जिसमें होम किया जा रहा हो, बहुभ्यो दियते यत्र, और बहुत दिन तक जो चले, तत्र सत्र अभिधीयते, उसे सत्र कहा जाता है। बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हो और उसमें स्वाहा स्वाहा की आहुति दी जा रही हो और बहुत दिन तक चले, उसे सत्र कहते हैं। भक्तों, जब यज्ञ का अनुष्ठान होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कर्तारो बहुवो यत्र, बहुत सारे ऋत्विक ब्राह्मण भी होते हैं, बहुत सारे यजमान भी होते हैं और आहुति दी जाती है, और एक दिन नहीं बहुत सारे दिन तक चलता है, इसलिए उस यज्ञ को सत्र कहा जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा इस भागवत कथा को भी सत्र कहा जाता है। तो आपने सुना है भागवत कथा को भी सत्र कहा जाता है, यज्ञ को सत्र कहा जाता है यह तो पता है, लेकिन भागवत को सत्र क्यों कहा जाता है? भक्तों, भागवत भी एक यज्ञ है। बोले भागवत यज्ञ है तो भागवत में बहुत सारे यज्ञ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। तो इस भागवत कथा में भी जितने भी श्रोता हैं ये सब लोग यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, सब लोग यजमान हैं। बोले भागवत, बोले यज्ञ में तो आहुति होती है, बोले इसमें भी आहुति है, सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, कुछ लोग तन, कुछ लोग मन, कुछ लोग धन से, ये आहुति है। बोले उस यज्ञ में तो स्वाहा स्वाहा ध्वनि होती है, बोले इसमें भी महामंत्र की ध्वनि है, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इसमें भी ध्वनि है। वास्तव में वह यज्ञ और भागवत यज्ञ में कोई अंतर नहीं है। और यदि इसकी गहराई में, इसके तारतम्य को यदि आपको जानना है, और यदि मन में प्रश्न हो कि वह द्रव्य यज्ञ श्रेष्ठ है या भागवत यज्ञ श्रेष्ठ है, भक्तों द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ यह भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि भागवत यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न किया जाता है। तो इस प्रकार पूरा विश्व सुजाम सत्रे, बहुत पहले मन्वंतर में प्रथम कल्प के स्वयंभू मन्वंतर में मरीचि आदि ऋषि मुनि एकत्रित हुए, क्यों? सत्र यज्ञ करने के लिए। और उस यज्ञ में समेता परम ऋषय, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए थे, वशिष्ठ जी आए थे, नारद जी, वेद व्यास, असीत देवल व्यास, अनेक ऋषि मुनि वहां पर पधारे। और इतना ही नहीं, तथा अमर गणा सर्वे, सर्वे समस्त अमर गण, अमर माने कभी नहीं मरने वाले देवता भी उस यज्ञ में आए थे, इंद्र इत्यादि समस्त देवता, स अनुगा मुनयोग नय, और बड़े बड़े मुनि, मुनय मननशिला, जो रात दिन भगवान का मनन करते रहते हैं, भगवान की कथा का चिंतन करते हैं, ऐसे मुनि भी वहां पर पधारे थे। भक्तों मुनि किसे कहते हैं? मुनि उसे कहते हैं जो रात दिन भगवान की लीला का मनन करे। परंतु संसार में कुछ लोग भगवान की लीला का मनन नहीं करते हैं, अपने संसार का और पैसे का मनन करते हैं, उसे मुनि नहीं, उसे मुनिम कहा जाता है, पैसे गिनने वाला होता है मुनिम। मुनि तो भगवान के का मनन करने वाले को, बड़े बड़े मुनि स अनुगा अपने शिष्य को साथ में लेकर आए थे। और इतना ही नहीं, अग्नय साक्षात अग्नि देवता वहां पर पधारे। अग्नि का अर्थ, अग्नि क्या जलते जलते वहां पर आई होगी? एक आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, अग्नय तद अधिष्ठात्री देवा समेता बभू। अग्नि के अधिष्ठात्रा जो देवता थे वह वहां पर आए थे, अग्नि नहीं। जैसे गंगा की अधिष्ठात्री देवी गंगा देवी है, तुलसी की अधिष्ठात्री देवी वृंदे देवी है, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी है, वैसे अग्नि के अधिष्ठाता देवता साक्षात वहां पर पधारे थे। सब लोग वहां पर आए हैं, हजारों हजारों ऋषि मुनि, देवता, अग्नि, बड़े बड़े लोग वहां पर उपस्थित हैं, और समस्त प्रजापति आए हैं, यज्ञ की अग्नि जल रही है। और उस समय अब आगे कह रहे हैं, तत्र प्रविष्टम ऋषयो, उस समय सभी लोगों की दृष्टि एक ओर गई, क्यों? क्योंकि प्रविष्ट एक महान व्यक्ति उस सभा में प्रवेश करने वाला था। तत्र प्रविष्टम ऋषयो, उस यज्ञशाला में प्रविष्टम पधारे, कौन? दक्ष प्रजापति, सभी प्रजापतियों के राजा दक्ष प्रजापति वहां पर पधारे। दृष्ट्वा अर्कम इव रोचिसा, उस दक्ष प्रजापति के शरीर से जैसे सूर्य में से तेज निकलता है, उतना तेज दक्ष प्रजापति के शरीर से निकल रहा था। अर्कम इव, सूर्य के समान तेज, ब्राजमानम वितिमिरम कुर्वंतम तन महत सदा, और अपने शरीर की कांति से, दक्ष प्रजापति के शरीर के तेज से आजू बाजू की जो दिशाएं थी वो ब्राजमानम चमक रही थी। दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल रहा था, और वह भवन दक्ष प्रजापति के तेज से प्रकाशमान हो गया। दक्ष प्रजापति आए हैं, जिस सभा में ब्रह्मा जी भी थे, इंद्र, समस्त 33 करोड़ देवी देवता थे, शिव जी भी बैठे थे, उस सभा में दक्ष प्रजापति आए। और जैसे ही दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश किए, मैत्र ऋषि कहते हैं, उदष्टि उदतिष्ठन सदस्यास्ते स्वधिष्णव्ये सहाग्नय रूते विरिञ्चं शर्वं च तदभासाक्षिप्त चेतस। दक्ष प्रजापति जैसे ही उस कमरे में पधारे, उदस तिष्ठन, उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे सब लोग खड़े हो गए। उदस तिष्ठन, परंतु मैत्र ऋषि कहते हैं, रुते विरिंचा शर्वम च, विरिंच ब्रह्मा जी और शर्वम शिव जी, ये दोनों को छोड़कर सब लोग खड़े हो गए। उदत तिष्ठन, वास्तव में दक्ष प्रजापति सबके राजा थे, और जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी सभा में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को आदर देने के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। कभी कभी मन में प्रश्न होता है, नहीं खड़े होने से क्या होता है? भक्तों, बड़े व्यक्ति के आगमन से यदि हम खड़े नहीं होंगे तो उस व्यक्ति के प्रति अनादर होगा, अपराध होगा, और यह अपराध किया था सुध गोस्वामी के पिता रोमहर्षण सूत ने। इतिहास आप सब लोग जानते हैं, एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में रोमहर्षण सूत जी भगवत कथा सुना रहे थे 88,000 ऋषि मुनियों को, और उस समय भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई दाऊ जी महाराज, बलदेव जी, तीर्थ यात्रा करते 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 नैमिषारण्य में पधारे। जैसे ही बलदेव जी उस कथा के सत्र में गए, जितने भी श्रोता थे सब लोग खड़े हो गए बलदेव जी के आगमन से, परंतु रोमहर्षण सूत व्यास गादी पर बैठे थे, उनके मन में असमंजस हुआ, मैं वेद व्यास जी की गादी पर बैठा हूं और बलदेव जी आए हैं, खड़ा हो जाऊं या न हो जाऊं ना हो, असमंजस हुआ। परंतु बलदेव जी के मन में हुआ कि ये कथा करने के लिए बैठा है और खुद आचरण नहीं कर रहा है, जब खुद अपने जीवन में वह आचरण नहीं करता है तो दूसरों को क्या सिखाएगा। बलदेव जी के हृदय में बहुत क्रोध हुआ। वास्तव में इस संसार में जो लोग मात्र बोलते हैं परंतु वह आचरण अपने जीवन में नहीं करते हैं, मैंने आपको कल बताया था वो प्याज लहसुन वाला, हम प्रवचनों में कहते हैं नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, और खुद जाकर पीते हैं। ऐसे लोग जब कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो बलदेव जी बहुत क्रोधित होते हैं कि ये केवल बोलता है, अपने जीवन में इसको आचरण नहीं करता है। बलदेव जी क्रोधित हो गए। कथा व्यास बनकर सिद्धांत और उपदेश का पालन नहीं करता है। बलदेव जी ने एक तिनका अपने हाथ में लिया और तिनका उस रोमहर्षण सूत के गले में मारा, धड़ से गला अलग हो गया, उसी जगह पर रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि महापुरुष के आगमन से खड़े नहीं हुए। इसलिए भक्तों, यदि महापुरुषों की, किसी बड़े व्यक्ति की कृपा चाहिए तो उनके आगमन से खड़ा हो जाना चाहिए, इससे सत्कार होता है, कृपा मिलती है। और केवल आध्यात्मिक कारण ही नहीं, इसका एक साइंटिफिकल रीजन, एक वैज्ञानिक कारण है। जब कोई महापुरुष हमसे कोई गुणों में श्रेष्ठ बड़ा व्यक्ति जब हमारे सामने आता है, तब साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि हमारे जो प्राण है वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। बड़े व्यक्ति को देखकर हमसे ज्यादा गुणवान, हमसे ज्यादा उम्र वाले, हमसे किसी भी फील्ड में बड़े व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हमारे प्राण ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और यदि हम बैठे रहते हैं तो वो प्राणों का जो धक्का है मस्तक मस्तिष्क में लगता है और उस धक्के से हमारी आयु कम हो जाती है। परंतु वो प्राण ऊपर चढ़ते हैं और व्यक्ति जब खड़ा हो जाएगा तो वह धक्का नहीं लगेगा, उसकी आयु सही सलामत रहेगी। साइंटिफिकल रीजन। इस प्रकार कुल मिलाकर सार यह है, बड़े व्यक्ति को देखकर हमें अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। मैत्र ऋषि कहते हैं, उदस्तिष्ठन सदस्यास्ते, जितने भी सभा सदस्य थे, स्वधिष्णेभ्य सह अग्नय, स्वधिष्णेभ्य अपने आसनों के साथ, यहां तक अग्नि देवता भी खड़े हो गए। परंतु दो लोग खड़े नहीं हुए, कौन? विरिंचम शर्वम च, विरिंची ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता हैं और पिता को अपने पुत्र के आगमन पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। पुत्र यदि आता है, पिता खड़ा नहीं होता है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, बहुत ठीक बात हुई। परंतु शिव जी क्यों खड़े नहीं हुए? विरिंच शर्वम च, क्योंकि शिव जी तो सब ओर से ब्रह्मा जी से छोटे हैं, शिव जी खड़े नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बेचारे को झपकी आ गई होगी, मंगला आरती में जगे होंगे, कुछ नींद आ रही होगी, पता नहीं चला होगा, कोई कारण उस बेचारे शिव जी खड़े नहीं हो पाए। लेकिन अब आप देखिएगा कि शिव जी खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति ने क्या किया। आगे मैत्र ऋषि कहते हैं, सदस्यस्पति सदसस्पति भी दक्षो भगवान साधु सत्कृत अजलोक गुरुम नत्वा निशसारत दाग्यया। सदस्पति भीर साधु सत्कृतम भगवान दक्षो, सभासदों के द्वारा आदर पाकर दक्ष प्रजापति को आदर प्राप्त करने की आदत पड़ गई। संसार में ऐसा होता है, भक्ति में शुरू शुरू में लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब प्रचार करते हैं बहुत लोग, हमने बहुत लोगों को देखा है, परंतु जैसे जैसे भगवान की कृपा से उनके गुण प्रकट होते हैं और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, आदर देते हैं, तो उसे आदर प्राप्त करने की आदत पड़ जाती है। सदस्पति भी साधु सत्कृत, सभासदों के द्वारा आदर प्राप्त कर करके दक्ष प्रजापति को यह आदत पड़ गई थी। ऐसी आदत न हो यह बहुत अच्छा है। वास्तव में लोगों से सम्मान ग्रहण करने की आदत भक्तों को नहीं होनी चाहिए। भक्तों को सदैव दूसरों को मान देना है, किसी से सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत उपदेश नहीं दिया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आज से 525 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए और आकर उन्होंने बहुत कुछ नहीं, केवल 7-8 श्लोक में शिक्षा अष्टकम किया दिया। सर्व वेदांत उपदेश सार स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि आप सदैव निरंतर भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो अमानिन मान देना, खुद स्वयं मान की आशा न रखकर दूसरों को मान देना सीखो, तब आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, अन्यथा नहीं। भक्ति भक्ति निरंतर करने के लिए योग्यता क्या है? भक्ति को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। यदि भक्ति को टिकाए रखना चाहते हो तो अमानीन मान की आशा न रखकर दूसरों को मान देना सीखो। आज कई लोग कहते हैं कि ये तो मुझे मान नहीं दे रही है, ये मुझे मान नहीं दे रहा है। भक्तों, एक सिद्धांत है, यदि आप किसी से मान चाहते हो ना, उसको मान दो। आप जैसे ही दूसरों को मान दोगे तुरंत आपको मान मिलेगा। लेकिन दूसरों को गाली देते हो और आप चाहते हो कि वो मुझे मान दे, कभी हो नहीं सकता है। जितना सम्मान करते हो उतना सम्मान मिलता है। हमें सम्मान की आशा नहीं रखनी है, परंतु जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो तो पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहते हैं। एक बार भी हार पहनाना भूल गए तो रूठ जाएंगे। 10 लोगों को जाना पड़ेगा उसे लाने के लिए। मंदिर की आरती यदि उसे पहले नहीं दी गई, क्रोधित हो जाएंगे। वहां आरती जल रही है, यहां इसका हृदय जलता होगा। सम्मान की आशा रखते हैं, परंतु ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा है, ये जो मान और प्रतिष्ठा है ना, मानेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, ये मान और प्रतिष्ठा शुकरों की विष्ठा के समान है। उसे त्यागना ही बुद्धिमानी है। भजन करने वाले को मान प्रतिष्ठा त्याग देनी चाहिए। परंतु दक्ष प्रजापति अब मान लेते लेते मान ग्रहण करने की आदत सी पड़ गई। कभी कभी हम भक्तों में भी ऐसा होता है, दूसरों की क्या बात करो, मेरे में मुझ में ही, लाल गोविंद दास की बात करो। लोग पांव छूते हैं, पांव पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, भोजन खिलाते हैं, और कभी कभी किसी ने नहीं दिया तो मन में विचार आता है कि ये लोग क्यों नहीं आदर दे रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की यह स्थिति है, भक्तों इसे बचना है, ये बहुत बुरी चीज है। कभी भी सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार, और हमारे भगवान ने जब सम्मान की आशा नहीं रखी तो हम तो उनके भक्त हैं। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। यदि कृष्ण ने ऐसा सोचा होता तो कृष्ण कभी मछली का रूप धारण नहीं किए होते, कभी कछुआ नहीं बने होते। क्या कछुआ को कोई सम्मान देता है? मछली को? मछली तो छींची छींची करते हैं। लेकिन ऐसा निकृष्ट देह भी भगवान ने धारण किया, भगवान नहीं चाहते हैं कि सम्मान। यहां तक कि राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, राजसूय सभा लगी हुई थी और अनेक लोग उस सभा में आते थे। आप जानते हो भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, अपने एक इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं। ऐसे साक्षात बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण इस संसार के छोटे छोटे जीवों के चप्पल उठाने की सेवा कर रहे थे, और चप्पल के साथ जितने भी लोग आए थे, भोजन करने के बाद जो जूठे पत्थर होते थे उस जूठे पत्थर को उठाकर फेंकने की सेवा कृष्ण करते थे। कभी नहीं सोचा कि मुझे सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। जब हमारे प्रभु ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम क्यों सोचें? चैतन्य महाप्रभु ने कभी सम्मान की आशा नहीं रखी। यहां तक कई लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते थे। आज तो हमको कोई भगवान कह दे, हम तो 2 फुट ऊपर हो जाएंगे। हाँ, मैं भगवान हूं, आई एम गॉड। परंतु चैतन्य महाप्रभु को कोई भूल से भी भगवान कह देता था, कान में उंगली डाल देते थे, और फिर भी बार बार कोई भगवान बोलता था तो नदी में कूद जाते थे कि मेरी प्रतिष्ठा और मेरा सम्मान सुनने से अच्छा है मर जाना, मर जाना अच्छा है। महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। अर्जुन ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई मुझे कुछ भी कह दे सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे गांडीर को यदि कोई कुछ भी कहे मैं उसे मार डालूंगा, और यदि मैंने उसे नहीं मारा तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा यदि मेरे गांडीर को किसी ने कुछ कह दिया। और एक दिन उस युद्ध में युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को और अर्जुन के गांडीर को बहुत भला बुरा कह दिया, और अर्जुन की प्रतिज्ञा, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा तो कभी विफल नहीं होती है। अर्जुन ने सोचा भाई को थोड़ी मार सकता हूं, वे खुद आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये क्या करने जा रहे हो, आत्महत्या करोगे? बोले मरना ही है तो एक काम करो, अपनी प्रशंसा खुद कर दो। जो लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं वो मरने के बराबर है, वो मरे हुए हैं। जो सम्मान चाहते हैं अपनी प्रशंसा करते हैं, नहीं करना चाहिए। परंतु दक्ष प्रजापति भक्त तो था नहीं, इसलिए दक्ष प्रजापति को सदस्य पति भी दक्षो भगवान साधु सत्कृत, दक्ष प्रजापति को आदर प्राप्त करने की आदत हो गई। और क्योंकि ऐश्वर्य, बहुत सारा ऐश्वर्य और पद पोजीशन था, इसलिए अज लोक गुरुम नत्वा निशसाद तद आज्ञया। पहले तो दक्ष प्रजापति अजम अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आसन ग्रहण करो। तद आज्ञया, ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति अपने आसन पर बैठ गए। प्राग निष्णम नृणम दृष्ट्वा नामृष्य तद नादृत वाच वामम चक्षुर्व्य अमी वक्ष दहन निवह। परंतु अपने आसन के ऊपर बैठकर दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मेरे आने से ये सब लोग खड़े हो गए, ये मेरा दामाद शिवजी जो थे दक्ष प्रजापति के दामाद थे, दामाद जानते ना, दामाद जानते सब लोग, शिवजी दक्ष प्रजापति के दामाद थे। बोले सब लोग खड़े हो गए, ये मेरा दामाद क्यों खड़ा नहीं हुआ? दक्ष प्रजापति ही बहुत क्रोधित हो गए, अनादृत। क्यों? क्योंकि शिवजी ने दक्ष प्रजापति का आदर नहीं किया।